मौलाना ने रिक्वेस्ट की है कि अगर कुछ लोग सवाल करना चाहें तो वो इस हवाले से कर सकते हैं।
मेरा सवाल ये है कि हम सब जितनी करना है, बट हम सबका मकसद ये है कि अपने तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि हम ज़माने का इमाम या इमाम सल्लम हमसे राज़ी हो, खुश हो, हम अपनी आखरत को और आकिबत को संवार सकें, तो क्या हमारे लिए क्या हम करना चाहिए, क्या आप क्या?
नौजवानों, सवाल ये है कि क्या तरीका पाया जाता है इमाम वक्त खुश हो जाएं? तो कोई ऐसा तरीका नहीं है जो तवीज़ दागों वालों के पास होता है कि वो तवीज़ लिख देते हैं कि इस जिक्र को बार बार सुबह शाम पढ़ते रहें और इमाम वक्त खुश हो जाएंगे। लेकिन वो तरीका जो हुसैन इब्ने अली ने अपने क़याम के लिए फरमाया, वो तरीका सबसे बेस्ट है और उसी तरीके पे अमल करने से हमारे मौला भी खुश होंगे, इमाम वक्त भी और इमाम हाजिर भी। इमाम ने क्या फरमाया, अला तरौना अन्नल हक ला यामुलु बे, क्या तुम ये नहीं देखते कि हक पे अमल नहीं किया जा रहा? वो अन्नल बातिला ला तुनहौना अन्हो, क्या तुम ये नहीं देखते बातिल से नहीं रोका जा रहा? जब तुम ये देखते हो कि हक पे अमल नहीं किया जा रहा, जब तुम ये देखते हो कि बातिल पे अमल नहीं किया जा रहा, तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम उठो। और उठने के बाद क्या करो? इमाम ने फरमाया, अना औला बिन नुसरत दीन, दीन की मैं मदद करूं मैं सबसे ज्यादा इसका हकदार हूं। वह एजा शरिया, मैं शरीयत इस्लाम को इज्जत बख्शूं मैं सबसे ज्यादा इसका हकदार हूं। वल जहादो फी सबील ही, और खुदा के रस्ते में जहाद करना क्या है? फरमाया, कलमतुल्लाह हियल औलिया, अल्लाह का हुक्म सबसे ऊपर है। यह है मकसद इमाम हुसैन, यह है जहाद इमाम हुसैन कि हुक्म खुदाबंदी, इससे ऊपर कोई हुक्म ना जाए। तो नौजवानों, जो मकसद जो इमाम वक्त को खुशी का सबब बन सकता है वो हल मिन नासर यंसुरना, वो लब्बैक या हुसैन है। लब्बैक जुबान से भी हो, लब्बैक वजूद से भी हो, वो अला अना औला बिनुसरतिद्दीन, वो वही मकसद है, वही लब्बैक है जो दीन की मदद के लिए पुकारा गया है।
सवाल रोने के हवाले से मेंबर से हमने बहुत दफा सुना है कि बीवी का कौन है, मैं रोने वालों को बख्शवाऊंगी। आया ये रोना सिर्फ ये रोना है कि मौला हुसैन पे जो मजालिम हुए उन पे रोना, क्योंकि हमने हिंदुस्तान में भी देखा है जितने भी गैर मुसलमान हैं काफिर हैं, क्योंकि जब मजालिम सुनते हैं के सामने जिक्र किया वो भी रोते हैं, आया उनको भी बख्शवाया जाएगा? या वो रोना है जो मारिफत के साथ रोना है, उसमें थोड़ी बहुत अगर
आपने फरमाया कि दर हकीकत में जो मासूम का फरमान है कि रोना जो है वो सबब बख्शिश है, तो नौजवानों इसमें किसी किस्म का कोई भी शक व शुबा नहीं है कि यही आंसू ज़रिया नजात है। इस आंसुओं के लिए कभी फरमाया मन बका इशरीना, कभी कहा मन बका खमसीना, कभी कहा कि कोई 50 आदमियों को रोए या रुलाए उस पर जन्नत वाजिब है, कभी कहा कोई 20 आदमियों पर रोए या रुलाए उस पर जन्नत वाजिब है, कभी कहा 10 आदमियों के लिए कहा कि वही यानी जो 10 आदमियों को रुलाए उस पर जन्नत वाजिब है, कभी 5 आदमियों के लिए, कभी 1 आदमी के लिए, और कभी इंसान की अपनी ज़ात के लिए कहा कि मन बका व अबका व तबा का, जो रोए या रुलाने की शक्ल बना ले वजबत लहुल जन्ना, उस पर जन्नत वाजिब है। और रही जो बात ये है कि कुछ हिंदू भी रोते हैं, कुछ लश्कर यजीद में भी रोते थे, वो कैसा है? तो नौजवानों मेरी क्या मजाल कि मैं इस बारे में कुछ हदिया करूं, लेकिन जो बुज़ुर्गों ने इसका फ़लसफ़ा और लॉजिक बताई है वो चाहता हूं बड़े अदब और एहतराम से आपकी खिदमत में हदिया करूं। फरमाने लगे जब उलमा इकराम में सवाल उठाया गया कि कैसे एक आंसू है जो इंसान को जन्नत तक पहुंचा देते हैं, एक छोटा सा आंसू एक खतरा इंसान के लिए वजबत लहुल जन्नत, जन्नत को वाजिब बना देते हैं। फरमाने लगे कि दर हकीकत में कुछ मुख्तसर और छोटी चीज़ें ऐसी हैं जिसे अल्लाह ने शरफ दिया बख्शा है कि उससे बड़े बड़े काम हो जाते हैं।
एक छोटा सा स्विच होता है ना, पूरे शहर की शहर को रोशन कर देता है। ईएसडी होता है, इमरजेंसी शटडाउन बटन, अगर वो क्लिक कर दिया जाए तो पूरा शहर में अंधेरा हो जाता है। तो एक छोटा सा बटन है लेकिन पूरे शहर को एक मरतबा रोशन कर देता है। सुबह उठते हैं, एक छोटा सा बटन क्लिक करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो एक छोटे से बटन से कभी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, कभी शहर रोशन हो जाते हैं, कभी बड़े बड़े काम हो जाते हैं। तो इसी तरह से एक छोटे से आंसू से बड़े काम हो जाते हैं। और एक उन्होंने बात फरमाई, फरमाने लगे हाँ इसमें एक शर्त है, ये छोटे से छोटे से बटन से बड़े काम हो जाते हैं। फरमा इस बटन का और शहर की लाइटों का एक कनेक्शन होना चाहिए, अगर ये कनेक्शन किसी तरीके से टूटा हुआ होना तो फिर वो जो है लाइटें रोशन नहीं होती। बस यही है कि ये आंसू जो है जो बहते हैं, इन आंसू बहाने वाले का और इमाम हुसैन का एक रब्त होना चाहिए, और अगर ये रब्त ना हो तो फिर कितने भी आंसू बह जाएं उसकी जो है जिम्मेदारी नहीं है। वो आंसू जो इमाम हुसैन के रब्त के साथ है, जो इमाम हुसैन के मकसद के साथ है, जो उनके आज़ादारी के साथ है, जो उनके इश्क के साथ है, जो उनके मकाम को समझते हुए हैं, उन आंसुओं की बड़ी कदर की
دیگر محمد والے محمد بلند تر
محمد۔ فرمایا گیا ہے کہ مولا نے اپنے بھائی سے یہ کہا تھا محمد بن حنفیہ سے کہ نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، یہ کیوں نہیں کہا کہ یزیدیوں کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں؟ دیکھیں نانا کی جو امت ہے اس کا دائرہ فقط مسلمانوں تک نہیں ہے، بلکہ تمام اس وقت انسان جتنے بھی پائے جاتے ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں یا دوسرے ہیں، یہ سب رسول پاک کی امت میں آتے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی ختم ہو چکی ہے، بقیہ انبیاء کی شریعتیں بھی ختم ہو چکی ہیں، یہ آتے ہمارے رسول کی امت میں ہیں۔ اس میں کچھ وہ لوگ ہیں جو کلمہ پڑھ چکے ہیں، کچھ وہ ہیں جو نہیں پڑھ چکے، تو در حقیقت میں لیکن سب سے پہلے مراد جو ہے وہ مسلمان ہی ہیں، اور جن لوگوں پہ زیادہ اثر ہو ان کو پہلے کہا جاتا ہے۔ جیسے پروردگار دو عالم نے فرمایا ونزل عشیرتک الاقربین، میرا حبیب آپ سب سے قریبی افراد کو ڈرائیں۔ تو کیا مقصد پیغمبر اسلام فقط قریبی احباب تھے؟ نہیں، لیکون للعالمین نذیرا، ہم نے رسول تو بھیجا ہے عالمین کے لیے، تو یہ نزدیکی کیوں ہیں؟ یعنی اگر یہ نزدیکی ڈر گئے تو رسول عالمین تک بھی آپ کا انذار پہنچائے گا، اور اگر یہ جو امت جو سامنے ہے، جو کلمہ گو ہیں پہلی سٹیج پہ، اگر انہیں ان کی اصلاح ہو گئی تو بقیوں کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ ماتم حسین،